दो अर्थ हैं, एक तो परम माने सबसे श्रेष्ठ, परम का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, सबसे श्रेष्ठ, और तप माने तपस्या। जो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ तपस्या करे उसको परम तप कहते हैं। तो अर्जुन की जो तपस्या है वो सबसे श्रेष्ठ है। तपस्या मनुष्य के जीवन में तपस्या की बहुत आवश्यकता है, और अर्जुन को मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है, नरश्रेष्ठ, नरम चैव नरोत्तमम। अर्जुन नर ऋषि के अवतार है, भगवान कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार है। यह समझो कि भगवान कृष्ण के शरीर में नारायण ऋषि समाविष्ट है, अर्जुन के शरीर में नर ऋषि का समावेश है। तो नर ऋषि जो है ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। नर और नारायण ये दोनों ऋषि तपस्या कर रहे हैं भद्रिकाश्रम में। भद्रिकाश्रम में चूंकि रहते हैं नर और नारायण ऋषि, इसलिए उनको कहते हैं बद्री नारायण। बद्री नारायण अपनी तपस्या के द्वारा ही पूरे संसार की रक्षा कर रहे हैं। ये अर्जुन कृष्ण ही हैं, नर और नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। भारतवर्ष में भगवान का जो रूप है वो नर नारायण के रूप में है। ये बताया जाता है कि सतयुग में भगवान भद्रिकाश्रम में प्रकट होते हैं, निवास करते हैं, और त्रेता में कहां पर, रामेश्वरम में भगवान का निवास है, और द्वापर में कहां पर, द्वारका में निवास, और कलयुग में भगवान का निवास कहां पर है, जगन्नाथपुरी। चार धाम है ना, ये जो चार धाम है तो ये सतयुग त्रेता द्वापर कली में क्रमशः ये जो है मतलब प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान का निवास वहां पर है, भगवान का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है सतयुग में नर नारायण के रूप में। या अभी कलयुग में नर नारायण का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, दो बर्फ के पहाड़ हैं वो दिखाई देते हैं, नर और नारायण ऋषि उस बर्फ के अंदर है, उनके शरीर पर बर्फ जमी हुई है, कोई नर नारायण ऋषि का दर्शन नहीं कर सकता, दो पहाड़ हैं बर्फ के, है। कलयुग में भगवान अपने को छिपा लेते हैं, सतयुग में नर नारायण के साक्षात कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है, मिल सकता है उनसे, भगवान प्रकट रहते हैं, है ना। त्रेतायुग में रामेश्वरम में भगवान प्रकट हैं, साक्षात प्रकट हैं, द्वापर में भगवान साक्षात द्वारका में प्रकट रहते हैं, और कलयुग में साक्षात भगवान कहां पर है, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है बहुत बड़े तपस्वी हैं, नर और नारायण ऋषि अपनी तपस्या से ही वे सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। ये बताया गया नर नारायण ऋषि की तपस्या से ही इस पूरी सृष्टि की रक्षा हो रही है, नहीं तो ये कब का विनाश हो गया होता। और विनाश की भविष्यवाणियां होती रही, होना भी था, विनाश की कितनी भविष्यवाणियां हुई हैं, और वो सही थी भविष्यवाणियां, लेकिन वो विनाश क्यों टल रहा है, क्यों टल रहा है, इसको कोई जानता है। नर नारायण की तपस्या के कारण हो रहा है, अपनी तपस्या से ही वो रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो ये जो आदमी, आज का जो आदमी है वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, कोई किसी का भला नहीं सोचता, सब एक दूसरे को मारने वाले हैं, यत्र मृत्यु हो परस्परम। तो परम तप का मतलब क्या है, कि जो अपनी तपस्या से पूरे संसार का कल्याण करे, पूरे संसार की रक्षा करे, ये नर नारायण ऋषि। अर्जुन का जो चरित्र है वो महाभारत में बताया गया है, नर ऋषि के रूप में। कोई राजा था, पूरी भूमंडल का एक छत्र राजा, सम्राट पूरी पृथ्वी का था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो किसी ऋषि के पास गया और उसने कहा कि मुझे जो है कोई चाहिए योद्धा युद्ध करने के लिए, जिससे मैं युद्ध करूं। तो उन ऋषि ने उसको कहा कि तुम नर नारायण ऋषि के पास जाओ भद्रिकाश्रम में, वो तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा को पूरी करेंगे। तो राजा अपनी पूरी सेना लेकर के और नर नारायण ऋषि के आश्रम पर आया। तो उसने युद्ध मांगा, युद्ध करो मेरे साथ। नारायण ऋषि बोले कि देखो इस स्थान पर तो किसी प्रकार का हम लोग युद्ध नहीं करते, ये स्थान युद्ध करने का नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं युद्ध करने का। लेकिन वो फिर भी बार बार आग्रह करता रहा, नहीं युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो नर ऋषि को कुछ क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में कुछ सीके रख लिए, अपने तिनके या सीके अपने हाथ मुट्ठी में भर करके खड़े हो गए हैं और गुस्से में बोले कि चल मैं युद्ध करता हूं, तू युद्ध कर अपनी पूरी सेना के साथ, मेरे साथ युद्ध कर, मैं खड़ा हूं युद्ध करने के लिए। उस समय राजा ने आदेश दिया सेना को, तो पूरी सेना ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा की और नर ऋषि के पूरे शरीर में बाण छिद गए, असंख्य बाण उनके शरीर में लगे। इसके बाद नर ऋषि ने क्या किया, अपने हाथ की मुट्ठी खोली और फूंक मारी और तिनके जो है उनके हाथ के जब उड़े तो जितनी सेना थी राजा की, जितने सैनिक थे, सबकी आंखों में वो तिनके घुस गए। तब तो बड़ी पीड़ा हुई सेना को, सोचो किसी की आंख में तिनका चला जाए अब क्या काम करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। तब जब आंख में तिनके घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया, फिर सब शरण में आ गए कि रक्षा करो, रक्षा करो, आपसे हार गए हम। तब फिर नर ऋषि ने उनकी रक्षा की। तो इस तरह से इनकी तपस्या है, बहुत तपस्या है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही ये नर नारायण ऋषि हैं जो कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो परम तप का ये भी मतलब है। परम तप का और भी दूसरा मतलब है, एक और भी घटना है इसी जीवन में, जब अर्जुन इंद्रलोक में गए थे, उनको सब अस्त्रों की जानकारी चाहिए थी। तो वो जब गए थे उत्तर दिशा में, तो जहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि मुनि लोग नहीं जान पाए कि ये कौन व्यक्ति है जो यहां पर आ गया तपस्या करने के लिए। यद्यपि भी बिल्कुल नए हैं अर्जुन, बिल्कुल नए थे ऋषि मुनियों के बीच में, लेकिन उनकी तपस्या सबसे तीव्र थी, सबसे तीव्र थी। जितने ऋषि मुनि थे सब भयभीत हो गए अर्जुन की तपस्या को देख करके, सोच रहे थे ये किसकी तपस्या करने आए हैं, इनका क्या इरादा है तपस्या करने का। सब शंकर जी के पास आए, शंकर जी से कहा कि हमें पता नहीं है, एक नया व्यक्ति आया है, वो बड़ी अद्भुत तपस्या कर रहा है, जैसी तपस्या हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। अर्जुन जो है कैसी तपस्या करते थे, पैरों के पंजों के भी जो उंगलियां है ना, उनके ऊपर खड़े होकर के तपस्या करते थे। कितना कठिन है, पैरों के पंजों पर भी नहीं, पैरों के पंजों में जो उंगलियां होती ना, उनके ऊपर खड़े होकर तपस्या करते थे। आप खड़े हो सकते पैरों की उंगलियों पर, बड़ी कठिन तपस्या थी अर्जुन की। तो उसको देख करके सब ऋषि मुनि भयभीत हो गए, इतनी कठिन तपस्या हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम डरो नहीं, ये हमारे प्रभु हैं नर ऋषि। अर्जुन के बारे में शंकर जी ने कहा कि हमारे स्वामी हैं ये, नारायण के सखा नर ऋषि हैं ये, है? और इनकी तपस्या को देखकर के तुम चकित मत हो, क्योंकि ये महान तपस्वी हैं, है? और अब मैं इनकी तपस्या को बंद करा करके और इनको प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं। तब फिर शंकर जी किरात के वेश में आए, है? और एक दुंदुभी नाम का कोई असुर था, कुछ और नाम था याद नहीं आ रहा है, तो वो असुर सुअर के रूप में आया था। अर्जुन ने बाण चलाया उसको मारने के लिए, उस समय किरात का बाण भी लगा उसी सुअर के शरीर में, और दोनों के बाण से वो जो है आहत होकर के वो असुर मर के गिर गया। तब अर्जुन ने उस किरात को डांटा कि जब मैंने बाण चलाया उस पर तो तुमने अपना बाण क्यों चलाया, वो मेरे बाण से वो मर के गिर गया है ना, तुमने बाण क्यों चलाया, अब मैं तुमको मारूंगा। तो किरात कहता है क्या बात करते हो, मेरे बाण से वो मर के गिरा है, मैं तुमको मारूंगा। इस तरह से तू मैं हुई और अर्जुन और किरात में युद्ध हो गया है ना। तो इस तरह से शंकर जी अर्जुन से युद्ध करने का आनंद ले रहे थे। शंकर जी से कौन युद्ध कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी युद्ध कर सकता है। या शंकर जी को क्या मजा आएगा हमसे युद्ध करने में, आपसे युद्ध करने में, हम तो मच्छर भी नहीं उनके सामने, शंकर जी के सामने। ये अर्जुन से युद्ध करके जो है शंकर जी प्रसन्न हुए और फिर शंकर जी ने अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। शंकर जी का एक अस्त्र है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, वो अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया शंकर जी ने। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, इस अस्त्र के द्वारा अर्जुन चाहे तो पूरी सृष्टि का एक क्षण में संहार कर सकते हैं। शंकर जी अपना अस्त्र किसको दे सकते हैं, अर्जुन जैसे तपस्वी, महातपस्वी है ना, तो ये तपस्या थी अर्जुन की। अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने के लिए जब इंद्र ने रथ भेजा, मातली सारथी था इंद्र के रथ का, तो मातली इंद्र के रथ को लेकर के जब आए अर्जुन को स्वर्ग ले जाने के लिए, तो अर्जुन जब रथ में बैठे तो मातली ने भी बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। जब रथ ऊपर की ओर जा रहा था, घोड़े चल रहे थे बहुत तेज गति से, तो अर्जुन का शरीर नहीं हिल रहा था है? तो मातली ने कहा कि तो बड़े आश्चर्य की बात है, आपका शरीर नहीं हिल रहा है, रथ में रथ इतनी तेजी से चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, आपका शरीर नहीं हिल रहा है, जबकि इंद्र जब बैठते हैं तो उनका शरीर बहुत हिलता है, अर्जुन की तपस्या है तो परम तप का यही मतलब है। लेकिन दूसरा अर्थ परम तप का क्या है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शब्दार्थ देखिए क्या है परम तप। हाँ, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। परम तप, परम तप का मतलब क्या है, परम माने बहुत तेज और तप माने तपाना, बहुत ज्यादा तपाए। जैसे कि गर्मी की ऋतु में जो सूर्य होता है ना, वो इतना ज्यादा तपता है, बहुत ज्यादा तपता है कि हर व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति परेशान हो जाए तो कहते हैं पसीना छूट गया, तो सूर्य जो है ना ऐसा तपते हैं कि सबके पसीने छूट जाते हैं, है ना, बहुत फिर खड़ा नहीं रह सकता है उस तेज धूप में, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है। उसी प्रकार से अर्जुन का भी जो तेज है युद्ध में ऐसा होता है कि कोई भी शत्रु के पैर खड़े नहीं रह पाते, किसी भी शत्रु। अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं अर्जुन के सामने कोई भी शत्रु के पैर खड़े नहीं रहे, सबको भागना ही पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के पूरे शरीर की एक विशेष कवच से रक्षा कर दी और कहा कि जाओ तुम अर्जुन से युद्ध करो, अब तुम्हें कोई डर नहीं, अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। मैंने तुम्हारे शरीर की मंत्र के द्वारा रक्षा कर दी है, तुम्हारे शरीर में कुछ भी अब अर्जुन के बाण नहीं लग सकते हैं, अर्जुन कुछ भी करे जाओ लड़ो। तो दुर्योधन आ गया लड़ने के लिए, अर्जुन ने देखा हाँ सचमुच वो किसी भी शरीर में बाण मारे उसके शरीर में घाव नहीं हो रहा है, वो मंत्र के द्वारा, द्रोणाचार्य ने मंत्र के द्वारा रक्षा कर ली थी दुर्योधन के शरीर की, सब अंगों की, एक एक अंगों के नाम ले लेकर के रक्षा कर दी, आंखों की, सिर की और इधर सीने की, सब सब अंगों की। तो फिर अर्जुन ने जब देखा कि ऐसी हालत है, तो अर्जुन ने कहां बाण मारे अर्जुन के, दुर्योधन के, यहां बाण मारे इधर इधर, इसको क्या बोलते हैं अंगुली के पोर के अग्र भाग में, यहां बाण मारे तो यहां पर रक्षा नहीं हुई थी। तो यहां जब बाण लगे दुर्योधन को, इधर बाण घुसे, तब वो भागा किसी प्रकार से। तो इस तरह से जो है अर्जुन को परम तप कहा जाता है कि शत्रुओं को उसी प्रकार से तपाते हैं अर्जुन जैसे कि ग्रीष्म ऋतु का सूर्य होता है वो तपाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परम तप, तुम परम तप हो, तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, तो तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम युद्ध ना करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारी दुर्बलता मानी जाएगी, तुम्हारी उदारता नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी वीरता नहीं मानी जाएगी। जबकि अर्जुन वीरता के भाव में ही ये सब बातें कह रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अर्जुन का जो शोक है वो सब वीरता के भाव में है, वीरता के भाव में ही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये नहीं बचेंगे, ये सब मारे जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम यद्यपि वीरता के भाव से युद्ध को मना कर रहे हो, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो क्या मानेंगे कि तुम दुर्बलता के भाव से युद्ध नहीं करना चाहते हो, कोई तुम्हारी वीरता नहीं मानेगा। तो ये बात तो हम कई बार समझा चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर आप ऐसे क्षमा करते हैं, जो क्षमा नहीं मांग रहा तो उस क्षमा का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो डरना माना जाएगा, ये डरना है। कोई व्यक्ति आपका अपराध कर रहा है वो नहीं डर रहा है और आप उसको क्षमा कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा, कि आप डर रहे हैं। अगर वो डर रहा है और आप क्षमा कर रहे हैं तब तो क्षमा की बात मानी जाएगी, वो डर रहा है और आप उसको नहीं मार रहे हैं तो ये क्षमा की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं डर रहा है और आप नहीं उसको मार रहे तो क्या माना जाएगा, कि आप डरे हुए हैं, है ना। तो क्षमा कभी ऐसे नहीं होती, जब कोई क्षमा ना मांगे और आप क्षमा करते हैं तो क्षमा नहीं मानी जाती है, तो दुर्बलता मानी जाती है। तो ज्यादातर लोग दुर्बलता के कारण ही युद्ध नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो वो उसको नहीं मार रहा है क्योंकि वो दुर्बल है, कमजोर है, इसलिए नहीं मार रहा है। लेकिन यहां अर्जुन की हालत यह नहीं है, अर्जुन बहुत वीर है, अर्जुन नहीं डरते हैं। अगर कृष्ण उनके रथ के सारथी बने तो अर्जुन ने कहा कि पूरी सृष्टि भी आ जाए मेरे सामने, सब देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस सब मिलकर के भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरता। अर्जुन नहीं डरते, लेकिन भगवान यहां पर बता रहे हैं कि इस दुर्बलता को तुम त्यागो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो, है ना। हृदय की दुर्बलता इस मामले में है कि अर्जुन को मोह है कि मेरे संबंधी है, ये भी एक दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है। यद्यपि अर्जुन मरने से नहीं डरते हैं लेकिन इनको इनको मारने से डर रहे हैं, तो ये भी तो एक देहात्म बुद्धि है, ना। ये भी क्या है, जो देहात्म बुद्धि का ही एक विस्तार है। कोई व्यक्ति देश के लिए मरना चाहता है, देश के लिए अपनी कुर्बानी करता है, मानवता की सेवा में अपने जीवन को लगाता है, है ना। लेकिन ये सब देहात्म बुद्धि ही है, इस देह को ही आत्मा मानना है, जबकि अपनी देह को वो बिल्कुल सुख नहीं दे रहा है और सब प्रकार से वो सुखों का त्याग कर रहा है और बहुत से दुख भी उठा रहा है, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, सब प्रकार के कष्ट उठाने के लिए तैयार है, लेकिन तो भी फिर भी ये देहात्म बुद्धि ही है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में समर्पित ना हो, कुछ लोग कहते हैं मानव सेवा, माधव सेवा, मनुष्यों की सेवा करें तो भगवान की सेवा होगी, इसका मतलब क्या है, मनुष्यों की सेवा करो और पशु पक्षियों की हत्या करो, है ना, तो ये नहीं है सेवा। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण सर्वभूत हेते रहता, जब वो ऐसा हो जाए तब मान जाएगा कि हाँ भाई ये उदार है, ये व्यक्ति उदार है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं तो उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है, वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी कुटुंब है। इस पूरी पृथ्वी में क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, सब जीव है, सब जीव है, सब जीव उसका कुटुंब होता है, तो ये उदारता कहलाती है। और ये दुर्बलता है, क्या दुर्बलता है, है कि बाकी तो सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं अर्जुन, लेकिन ये हमारे पिता हैं, ये हमारे संबंधी हैं, ये हमारे भाई हैं, है ना, इसलिए ये ठीक नहीं है, ये भी दुर्बलता है, है ना। देखने में तो बड़ी उदारता लगती है, लगता भी है कि देखो अर्जुन के कितने ऊंचे विचार हैं, भाई देखो राज्य नहीं पाना चाहते, सुख नहीं पाना चाहते, है जीवन और भिक्षा भी भोगना चाहते हैं और इनको नहीं मारना चाहते, बड़ी उदारता मालूम पड़ती है, लेकिन वास्तव में क्या है, दुर्बलता। देखो भगवत गीता की दृष्टि कितनी ऊंची है, भगवत गीता का जो ज्ञान है इसका कितना ऊंचा स्तर है, इस ऊंचे स्तर से अर्जुन के अंदर कितनी बड़ी दुर्बलता है। जबकि हम सामान्य व्यक्ति के स्तर से देखें तो कितनी बड़ी उदारता है, सोचो देखो कितना त्याग है, कितनी सहनशीलता, कितनी क्षमा, कितनी दया, ये सब दिखाई पड़ती है अर्जुन में। सबसे ज्यादा क्षमाशील, दयालु है, तपस्वी है, उदार है, अर्जुन मालूम पड़ते हैं। लेकिन देखो भगवान के स्तर पर कितने निम्न स्तर के, बहुत नीच है कि नहीं। उसी प्रकार से है कि जैसे कंगालों के बीच में है ना कोई लखपति होता ना, एक लाख रुपए जिसके पास है लखपति है तो बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन करोड़पति के सामने वो बिल्कुल कंगाल है कि नहीं। तो इस तरह से अर्जुन यद्यपि बहुत ऊंचे स्तर पर है लेकिन भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो बहुत ऊंचा है, है? और उस ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो अर्जुन बहुत दुर्बल है, बहुत दुर्बल है ना। तो इसलिए भगवद गीता का जो उपदेश है वो ऊंचे स्तर का है। अब जो व्यक्ति ना समझ पाए, जिसमें तपस्या ना हो वो इसको नहीं समझ सकता। इसलिए जो है जो अपने जीवन में तपस्या का पालन नहीं करते हैं वो इन सब बातों पर विचार नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस गीता में तो कहा कर्म करो तो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हैं? हम भी खाते पीते सोते हैं, सब कर्म करते हैं, और वही भगवान ने कहा है अर्जुन से कर्म करना चाहिए तो हम कर्म कर रहे हैं, बस खत्म। जो तपस्वी नहीं है इस मनुष्य के जीवन में तपस्या नहीं है करता वो भगवद गीता को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान ने गीता के अंत में कहा भी इदम तेना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना भगवद गीता। अब फिर समस्या ये है कि फिर किसको बताएं जो तपस्वी नहीं है, किसको बताएं, या तपस्या फिर कैसे करें हम जैसे कि हम गीता को समझ पाएंगे। तो कलयुग में तपस्या क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलयुग में ये तपस्या है। ये तपस्या वाणी की है, वाणी की तपस्या ये है। और शरीर की तपस्या क्या है कलयुग में, सवेरे उठकर स्नान करना, ये शरीर की तपस्या है कलयुग में। शरीर की तपस्या यही है, अगर आप नींद छोड़ करके है बिस्तर छोड़ करके अगर स्नान करते हैं है? तो शरीर की तपस्या है, है? और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं वाणी की तपस्या है ना। तो फिर आप भगवद गीता श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं है ना। तो शरीर तपस्या जो है शरीर की भी होती है, वाणी की होती है और मन की होती है, तीनों की तपस्या होती है ना। तो ये है तपस्या जरूरी है, तब हम जो है इस अर्जुन के जो है स्तर पर आ सकेंगे और हम समझ पाएंगे भगवद गीता को। किसी का कोई प्रश्न है आपका?
बताया गया है तो अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए भगवान कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्षत्रिय अगर तुम्हारा स्वभाव अगर खाद्य पदार्थ सब छोड़ोगे तो मारेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, अभी अपना फिर उठाओगे मारना शुरू करोगे, तो तुम्हारा लेकिन साधु का स्वभाव है दया करता है, साधु भगवान सब कर रहे हैं कि तुम भी तुम्हारे पर अगर कोई धूम करता तो तुम्हारे
है। हाँ, इसके पहले वाले श्लोक में या कुछ श्लोक के पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि क्षत्रिय का जो है ना स्वभाव क्या होता है, उसमें दया भी होती है, उसमें क्रोध तेज सब कुछ होता है ना। जहां युद्ध के लिए ललकारा जाए वहां पर वो कठोर होता है ना, और कोई अगर शरण में आए तो उसको फिर वो आश्रय देता है, उस पर दया करता है, सब बातें हैं। और भगवान राम ने भी क्षत्रिय का जो आचरण है वो करके दिखलाया भी, भगवान राम के आचरण में पूरा क्षत्रिय का जो है ना एक आदर्श था, आदर्श क्षत्रिय भगवान रामचंद्र है। तो जब रावण ने सीता का हरण किया तो राम ने क्या किया, कितना निर्दय व्यवहार किया रावण के साथ, उसके पूरे वंश का नाश कर दिया, है ना। लेकिन जहां पर दया करनी होती है, जहां पर दया की बात आती है, तो बहुत दयालु, बहुत दया करते हैं, है ना। तो सब चीजें हैं, राजर्षि, उसको राजर्षि कहते हैं, राजा भी और ऋषि भी है? वो क्रोध के समय में क्रोध करता है, और जहां दया का समय होता है वहां दया करता है। यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये स्थान जो है दया करने का नहीं है, विषम स्थम उपस्थित। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि विषम स्थल पर ये तुमको जो है ये कैसे दया का भाव आ गया। जहां पर युद्ध करने का स्थान है, जो युद्ध करने का स्थान है, उस स्थान पर तुम दया कर रहे हो, वो गलत है। जो स्थान दया करने का होता है वहां पर अगर युद्ध करते हो तो वो गलत है। विषम, विषम का मतलब वही है, सम नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उसी के समान स्थान भी होना चाहिए, ये विषम स्थान है। अभी तुम दया कर रहे हो जबकि स्थान दया करने के समान नहीं है। स्थान और आपका काम दोनों समान होना चाहिए, है कि नहीं। तो दया करना चाहिए ब्राह्मणों के ऊपर, है ना, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, दीनों पर दया करनी चाहिए, है ना। लेकिन शत्रुओं का नाश करे, क्षत्रिय का ये कार्य होता है कि शत्रुओं का नाश करे, दया नहीं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं ना कि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम, इस काम रूप शत्रु को तुम नाश करो, शत्रु का नाश करना चाहिए। जो शरणागत है, जो डरा हुआ है, हैं, और जो माफी मांग रहा है, उस पर दया कर सकते हैं। लेकिन वे शरणागत नहीं है, वे डरे हुए नहीं है, वो माफी नहीं मांग रहे, अगर उन पर दया करते हैं आप तो ये फिर शोभा नहीं देता। इस प्रकार की दया शोभा नहीं देती है ना। और कोई प्रश्न है? एक सेकंड, और किसी का प्रश्न है? अच्छा हाँ, आप पूछो। जब कोई व्यक्ति भगवान का अपराध करे तो हमें क्रोध करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति भी अनावश्यक रूप में ईर्ष्या कर रहा है तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान जो है आपके अंदर भी है और सब प्राणियों के अंदर भी है भगवान। अगर आपका भी जो है ना वो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपराध कर रहा है तो वो भी भगवान का अपराध कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज है। अर्जुन अगर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वृद्ध है, इनकी भी रक्षा करें। अगर इनके ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करे तो रक्षा करें। जहां कहीं धर्म हो, अन्याय हो, तो क्षत्रिय का कार्य होता है कि वो युद्ध करेगा, लड़ेगा, अन्याय का दमन करेगा। अब उनके साथ भी अन्याय हो रहा है तो भी अर्जुन को करना चाहिए, क्योंकि अन्याय तो अन्याय है, अधर्म का विरोध करना चाहिए। जो व्यक्ति असत्य है और अधर्म का आचरण कर रहा है तो राजा का कर्तव्य है कि उसका विरोध करे, उसका दमन करे, है ना, न्याय करे। जैसे जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो न्याय करता है वो, है? अगर उसकी भी जमीन कोई छीनता है तो भी उसको दंड देगा, और इनकी जमीन छीनता है तो भी दंड देगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अर्जुन का भगवान ही बता रहे हैं कि तुमको अन्याय का विरोध करना है, लेकिन जो कर्म का फल है वो तुम्हें नहीं भोगना। मुख्य चीज ये है कि तुम अपने कर्म का फल मत भोगो। तुम्हारे अधिकार में जो जमीन भगवान ने आपको दी है, आपके अधिकार में दी है, वो कोई व्यक्ति क्यों छीन रहा है? आप उसको छीनने मत दो। या आपकी जमीन का जो आप अपनी जमीन को भगवान की सेवा में लगाओ, ये है भगवान की भक्ति। तो वो भगवान के लिए लड़े हैं। अर्जुन का जो हिस्सा था राज्य का, वो भगवान की सेवा के लिए था, भगवान की सेवा के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर छीना चाहते और अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है वो व्यक्ति, तो हम लड़ करके छीनेंगे और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। आप समझे भाव ये है। जैसे मंदिर के लिए प्रभुपाद ने कहा कि लड़ो, कोर्ट में भी जाओ। कोई व्यक्ति मंदिर की जमीन छीने, मंदिर में कब्जा करे, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और मंदिर की जमीन अपने अपने अधिकार में करेंगे, क्योंकि इसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है वो मंदिर को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद के ही लड़के, ऐसा भी स्थिति आई कि प्रभुपाद के जो लड़के थे, विशेष रूप से उनका बड़ा लड़का था, उसने दावा किया था इस्कॉन के ऊपर। उसने कहा था कि हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी थी, जितने मंदिर बने हैं पूरे विश्व भर में, और उनके बाद में हम उनके लड़के हैं तो हमारी प्रॉपर्टी है, जितने भी मंदिर हैं जिनकी संपत्ति है ऐसा हमारे नाम होना चाहिए। आप सोचो प्रभुपाद के लड़के ने ये दावा किया था कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं पूरी दुनिया भर में ऐसा हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। कोर्ट में केस किया था कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो लड़े, ये कैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, अब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा क्या करेगा। तो उसने तो भक्ति का कुछ नियम का पालन किया नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है, जबकि ये जितने मंदिर हैं ये प्रभुपाद ने भगवान की सेवा के लिए बनाए। तो हम अगर ये जितने मंदिर हैं भगवान की सेवा के लिए है।